नशई औरत से बच्चा पैदा नहीं करना चाहता। मैं एक नशई औरत से बच्चा पैदा नहीं करना चाहता बाबा, आप नहीं समझ रहे। फरीदा नशा करती है, बहुत ज्यादा नशा करती है। ज्यादा नशा करती है कि मुझे यकीन है कि वो बच्चा सेहतमंद नहीं होगा। जब ये बच्चा दुनिया में आएगा, एक कमजोर इंसान होगा।
तुम ये झूठ बोल रहे हो, एक नया झूठ बोल के मुझे गुमराह करना चाहते हो, सही है?
नहीं खुदा की कसम, फरीदा नशा करती है। इससे पूछ लें, मना नहीं करेगी। अगर मना भी करे तो उसका चेकअप करवा लें, उसके बाद झूठ नहीं बोल सकती।
तो फिर तुमने क्यों एक नशई औरत से शादी की? तुम इंसान हो या फिर जानवर?
उस वक्त जब हमने शादी की थी तो वो नशा नहीं करती थी। एक साल बाद शुरू किया है। मुझे यकीन है कि अगर वो बच्चा इस दुनिया में आया तो वो खुद भी परेशान होगा, वो कभी खुश नहीं रहेगा।
उठो और मेरी नजरों से दूर हो जाओ मसूद, दफा हो जाओ यहां से। सुना नहीं, दफा हो जाओ यहां से, उठो और चले जाओ यहां से।
तुम यहां क्यों सो गए? मैंने कहा नहीं था कि अपने कमरे में जाके सोना?
यहां सुकून में हूं ममा।
उठो और अपने कमरे में जाके सो।
जी अच्छा।
क्या हुआ नरजिस बेगम? नरजिस, क्या हुआ बेगम?
हाँ कुछ नहीं, केतली गिर गई हाथ से और टूट गया।
चलो कोई बात नहीं, हाथ में चोट तो नहीं आई?
नहीं।
तुम चलो, मैं चाय बना कर लाता हूँ।
नहीं मैं खुद बनाऊंगी। हाँ ठीक हूँ।
तुम्हारी तबीयत ठीक है?
हाँ हाँ ठीक है,
अभी आता हूँ बस। तुम अदालत जा रही हो, दफ्तर जा रही हो? नरजिस बेगम,
हाँ
तबीयत ठीक है?
हाँ ठीक है। हॉर्न क्यों बजा रहे हो?
मैं गाड़ी का हॉर्न चेक कर रहा था। फिर कुछ हुआ है?
यानी क्या?
पता नहीं, तुम्हारे हवास दुरुस्त नहीं है।
नहीं यही हूँ। मसूद कहाँ है?
सो रहा है। तुमने कहा कुछ काम है, कब्रिस्तान नहीं जा सकती, इसलिए मैंने उसको नहीं उठाया। अभी तुम अदालत जा रही हो या कि दफ्तर?
दफ्तर। खुदा हाफिज।
वापसी पे आऊं तुम्हारे पास?
नहीं खुद आ जाऊंगी। तुम सिर्फ वापसी पर रास्ते से हलीम या सूप वगैरह ले लेना अफ्तार के लिए।
सही है।
Thank you.
सलाम हाजी साहब।
सलाम फरीदा बेटी, तुम्हें डिस्टर्ब तो नहीं किया कहीं मैंने?
नहीं नहीं हाजी साहब, आप फरमाइए।
मैंने उस दिन मसूद से बात की थी, उसने एक अजीब बात बताई, इसलिए तुम मुझसे मिलो।
क्या कह रहा था?
आज के रोज तुम मेरे पास आ सकती हो।
हाजी साहब आप मसूद की बातों पर यकीन मत करें।
मैंने तो अभी तक कुछ कहा ही नहीं कि उसने क्या बोला है।
वो जो कुछ भी कहेगा मेरे और आपके ताल्लुकात खराब करने के लिए।
तो तुम आज आ रही हो ना?
जी कितने बजे आऊं?
तुम 4 बजे के करीब मेरे दफ्तर में आ जाओ।
ठीक है हाजी साहब।
खुदा हाफिज।
खुदा हाफिज।
हेलो हेलो फरीदा,
आज मैंने सारी हीरोइन टॉयलेट में बहा दी है सर।
ये कभी नहीं हो सकता फरीदे, तुम इसको छोड़ नहीं सकती। कल रात भी यही कहा था, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ, बुरा नहीं सोचूंगी। पहले तुम हीरोइन खरीदती हो, अपना पैसा खर्च करती हो और फिर बाथरूम में जाकर बहा देती हो। जरा थोड़ा हौसला पैदा करो, मैं अभी तुम्हारे पास आ रही हूँ।
सर यहाँ मत आना, देखो मत आना। सर तुम्हें खुदा का वास्ता मुझे वो मत देना। अगर मैं मर भी जाऊँ तो भी नहीं। सर अगर मैं तुम्हें हीरोइन लेने के लिए फोन करूँ तो मुझे जवाब मत देना, समझ गई ना सर? मैं तुम्हें टेलीफोन करूँ, मैं तुम्हें कुछ भी कहूँ, लेकिन मुझे जवाब मत देना सर। और दरवाजा भी ना खोलना, और अगर दरवाजे पे मर जाऊँ तो भी वहीं पड़ा रहने देना। अपने पड़ोसियों को भी समझा देना कि मुझे घुसने नहीं दें। जरी उनसे कहना कि ये लड़की कातिल है, चोर है और बहुत बुरी है। जरी अपना घर भी बदल लो और उसके बाद तो मुझे अपना एड्रेस भी मत देना सारी। जरी मदद करो, मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे इंसान बना दो, मुझे माँ बना दो, मुझे एक माँ बनना है। मैं अब तुम्हारी तरफ नहीं आऊंगी, लेकिन अगर आ जाऊं तो इल्तिजा करती हूँ कि मुझे भगा देना सरी। मैं
फरीदे,
परेशान था, बहुत परेशान था। इसी की वजह से परेशान था। यह गुनाह डरा हुआ था और चाहता था कि असाला करूं। मुझसे मदद की दरख्वास्त की के इसको इस तरह ना रहने दूं जिस तरह के वो है। चाहता था कि मैं उसे गफलत में ना मरने दूं, इसे जगाऊं। मुझे यकीन है कि मेरा शौहर किसी परेशानी में है हाजी साहब।
वल्लाह अब मैं क्या कहूं बीबी, अगर तुम्हारे अलावा कोई और मेरे सामने बैठा होता और ये बातें करता तो मैं उसकी बातों को झुठला देता, लेकिन अब तुम्हारे बारे में मैं क्या कहूं।
उस दिन आपने कहा था कि इन बातों को ज्यादा ना सोचूं ताकि भूल जाऊं। खुदा की कसम कोशिश की कि आपकी बातों पर अमल करूं, लेकिन फिर हो जाता है।
इत्तेफाक से मैंने जो नसीहत तुम्हें पिछली मुलाकात में की थी उसके बाद मैंने तुम्हारी की हुई बातों पर बहुत गौर किया बेटा। जो चीजें तुमने देखी हैं उनकी हकीकत मैं तुमसे नहीं छुपाऊंगा। वो जो कुछ भी तुमने देखा था उन बातों पर यकीन करना वाकई मेरे लिए मुश्किल था, मगर वो सब मुकाशफा था। और ये कि इन मुकाशफात की सच्चाइयों को जानने के लिए दरअसल हमारे पास अभी कोई रास्ता नहीं, क्योंकि इमाम मासूम तक पहुंचने के लिए कोई राह नहीं है। लेकिन फिलहाल अगरचे हम इमाम मासूम तक नहीं पहुंच सकते, फिर मैंने अपने इमाम शनास दोस्त से इस बात का जिक्र किया जो इस बारे में काफी इल्म रखता था। उससे मेरी काफी गुफ्तगू हुई, उसके बाद मैंने यही बात अपने अहले बैत दोस्तों के सामने रख दी। ये वो लोग थे जो उलूम अहले बैत अलैहिस्सलाम से काफी वाकिफ रखते थे और उनके मुशाहिदात, ऐसे आलिम फाजिल लोगों के मुशाहिदात गलत नहीं हो सकते। वो चीजें जो तुमने देखी, उनके ख्याल में जो सारी चीजें तुमने देखी हैं वो सब बरज़ख से मुशाहिबा हो सकती हैं।
यानी कि आप कह रहे हैं कि वो जगह बरज़ख है?
बरज़ख, या फिर वो जगह बरज़ख की तमसील थी, इसीलिए वो मंजर तुम्हारी आंखों में ठहर के रह गया।
सही बात यह है कि मैं भी इसी तरह सोच रही थी, लेकिन ये किस तरह हो सकता है कि इंसान बरज़ख में चला जाए?
ओह, हमारे दुनिया और बरज़ख के बीच में एक पर्दा पड़ा हुआ है, वो पर्दा जो मरने के बाद हमारी आंखों से हट जाता है। लेकिन बकौल अल्लामा तहरानी, वो बंदगान खुदा जो खुदा को बहुत ही ज्यादा प्यारे होते हैं, वो इस पर्दे को बारीक से बारीक कर सकते हैं और वो हकीकी मौत और नफ्स के बंद होने से पहले ही, यानी कबल मौत, वो इस पर्दे को अपने दरमियान से हटा सकते हैं।
मुझे यकीन नहीं आ रहा कि मैं उन लोगों में हूँ, यानी कि मैं इसकी सलाहियत नहीं रखती।
यही बात जो तुम कह रही हो, मैं सलाहियत नहीं रखती, इसी से तुम्हारी सलाहियत की निशानदेही हो रही है। इनकिसारी और आजिज़ी ईमान की निशानियां हैं।
मगर क्यों रज़ा को मैं हमेशा वहां देखती हूँ? वो तो अभी जिंदा है, वो वहां क्यों है?
इत्तफाकन तुम्हारी उन बातों के बाद मैंने तहकीक की, मैंने किताबें पढ़ी और मेरी जस्तजू ने मुझे बताया, और ये कि तकरीबन तमाम फलसफे औलिया वगैरह, जैसा कि हमारे मुल्ला सदरा अल्लामा तबातबाई उस्ताद मुताहरी, इत्तफाक से ये सारे एक ही बात कहते हैं कि क्या हम अपने जिंदा जिस्म के अलावा इस पानी और मिट्टी से बने हुए जिस्म के अलावा एक बरज़खी जिस्म भी रखते हैं। हजरत इमाम खुमैनी अपनी फलसफियाना तकरीर में कहते हैं कि हम जितने भी इंसान हैं हम सब दो वजूद रखते हैं, यानी इस गोश्त पोश्त से बने हुए जिस्म के अलावा हमारा एक जिस्म और भी है जो बरज़ख में रहता है। हम अपने बेमिसाल बरज़खी जिस्म के साथ वहां रहते हैं, यानी हम बरज़ख में हर वक्त मौजूद रहते हैं। तो नतीजा, लेकिन अक्सर ये देखा जाता है कि दुनिया में रहने वाले इंसान जो है वो इस बात को नहीं समझते और वो एक तरह की गफलत में हैं अपने बरज़खी जिस्म की तरफ से। यानी वो इमाम खुमैनी इस जिस्म को एक मलकूती जिस्म का नाम देते हैं।
हाजी आवा, अगर वो बरज़ख है तो क्यों वो खूबसूरत है इतनी जगह कि जितना कि वो खूबसूरत बाग है वो बियाबान है, और बहुत खौफनाक है।
बरजख के भी कुछ मरातब होते हैं मेरी बेटी, उसमें एक जगह ऐसी है बिल्कुल जन्नत के जैसी। ये वो जगह है जहां मोमिनीन की पाक रूहें बसेरा करती हैं। दूसरी किस्म वो है यानी दोज़खे बरज़खी, जहां जालिमीन और लानती लोग रहते हैं।
लेकिन रज़ा न जालिम है न काफिर, तो क्यों इस बियाबान में है, तो क्यों इस दोज़ख में है?
नहीं नहीं बेकी, वो जंगल जिसकी तुम बात कर रही हो वो दोज़खे बरज़खी नहीं है। दोज़ख तो वो जगह है जहां इंसान को अजाब और नतीजा मिलेगा। लेकिन तुम तो ये बता रही थी कि उस बियाबान में हर कोई मुंतजर था फकत किसी चीज का।
जी हाँ जी हाँ।
बस यानी वो जगह दोज़ख नहीं, बरज़ख एक बिल्कुल अलग सी जगह है जहां पे अक्सर लोग इंतजार में हैं अपने अमाल और अपने किए के फैसले और नतीजे के। ये जगह बरज़खे मुतवस्सितीन कही जाती है, यानी कि वो लोग जो जिनके अमाल इतने सौले नहीं होते कि वो जन्नत बरज़खी में जा सकें, और ना इतने गुनाहगार होते हैं कि उन्हें दोज़ख में डाल दिया जाए। बिल्कुल तुम्हारे पेशे की तरह, मिसाल के तौर पर जैसे किसी की फाइल मुकम्मल ना हो और फिर ऐसे आदमी के खिलाफ कोई फैसला नहीं सुनाया जा सकता और ना ही हुक्म। तुम्हारा शौहर उसी गिरोह में से है।
लेकिन रजा तो बहुत अच्छा है हाजी साहब, बहुत मोमिन है। मुझे मुझे यकीन नहीं आता कि वो इस गिरोह से ताल्लुक रखता है।
हो हाँ, शुरू से शैतान इंसान को बहकाता चला आया है, हम सब उसकी जद में हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि शैतान मर्दूद खुदा के प्यारे बंदों को अपने काबू में कर लेता है।
मैं अभी क्या करूँ, मैं अब इसके लिए हाजी साहब किस तरह मैं इसकी मदद कर सकती हूँ?
इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता कि तुम्हें क्या करना चाहिए। जैसा कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ कि अगर मैं तुम्हारे मुशाहिदों को सही मान भी लूँ और तुम्हारी बातों को दुरुस्त तस्लीम कर भी लूँ, तो फिर भी तुम इस इंतज़ार में मत रहना कि दूसरे तुम्हारी बात मानेंगे या उस पर यकीन करेंगे, क्योंकि ये सब तो बस तुम देख रही हो ना।
जिस तरह के आप फरमा रहे हैं कि मेरे शोहर की बरज़खी शक्ल है जो कि मुझसे मदद मांग रहा है, मैं किस तरह इसको अलग अलग करूं? यकीनन कोई तो वजह होगी जो मैं इन सबको देख रही हूं हाजी साहब।
मेरे ख्याल में ये बेहतरीन तरीका है कि तुम अपने शोहर को होशियार करो और कोशिश करो, अगर वो कोई गलती कर रहा है या खुदा ना खास्ता किसी गुनाह में मुब्तला है तो उसे मुतवज्जे करो। बहरहाल मेरी नसीहत यह है कि सारी बातें और अपने मुशाहदात जब तक मजबूर ना हो जाओ और ज़रूरत ना हो तो किसी के सामने बयान ना करो।
कैसे हो आमिर?
सलाम, सो रहे हो क्या?
हाँ, मगर क्यों, कोई इमरजेंसी तो नहीं है?
नहीं, कोई इमरजेंसी नहीं है, तुम आराम करो। कल रात क्या हुआ था?
पहले से ज्यादा खराब हो गया है।
मैंने कहा था ना कि तुम गलत कर रहे हो।
अभी तो यूं है कि हर मुसीबत मेरे सर पे आ रही है। फरीदा बहुत बदल गई है हामिद, वो बहुत ही जहरीली हो गई है।
चलो खुदा का शुक्र है थोड़ी देर हुई, लेकिन तुम्हारी आंखें तो खुल गई। आज आ रही है, चलें डॉक्टर के पास।
डॉक्टर?
हाँ भाई, चेकअप के लिए। मैं फरीदा की बात कर रहा हूँ।
हाँ नहीं,
अभी तो वो कह रही है कि वो बच्चा रखेगी,
लेकिन कल रात मैंने हाजी रजा को बता दिया कि वो नशा करती है। पता नहीं, शायद बाबा उससे बात करेंगे और उसको राजी करेंगे, मगर कितने पैसों पर ये मुझे नहीं पता।
चलो ठीक है, आज का अपॉइंटमेंट मैं कैंसिल करवा देता हूँ। और कोई नई ताजी है?
ठीक है, तो फिर खुदा हाफिज़।
खुदा हाफिज़।
सलाम।
वालेकुम सलाम।
अंदर आ जाओ। सलाम, आ जाओ। बैठ जाओ। तुम्हारी तबीयत ठीक है?
जी हाँ, ठीक है।
तुम्हारा रंग क्यों उड़ा हुआ है फरीदा? बीमार सी लग रही हो।
नहीं, मैं ठीक हूँ, कुछ भी नहीं। तो आपने मसूद से बात की?
हाँ।
तो क्या वो राजी हो गया इस बात पे कि हम बच्चों को रखेंगे?
नहीं, राजी नहीं है। कुछ बातें पता चली हैं तुम्हारे बारे में, इसीलिए मैं चाहता था कि तुम यहाँ आओ, ताकि झूठ सच का पता लगे।
यानी क्या क्या बातें की है उसने? हाजी साहब, मेरी मालूमात आपसे बहुत कम है, खासतौर पर तीन ही मामलात में, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि एक ऐसा बच्चा जो अभी दुनिया में आया भी नहीं, उसको मारना हर तरह से हराम है।
सही कह रही हो, लेकिन खास हालात में अहकाम शरीयत में कुछ तरमीम की जा सकती है। मसलन मरा हुआ जानवर खाना हराम है, लेकिन कहत की हालत में जब खाने को कुछ ना हो तो आप मुर्दार खा सकते हैं। बाज़ औक़ात ये काम बेहतर हो जाता है, बल्कि वाजिब भी हो जाता है।
तो फिर ऐसा कौन सा मसला हो गया है जिसकी वजह से मेरे बच्चे को मारना शरई वाजिब हो गया है?
वो तुम हो, मसला तुम खुद हो।
क्यों, मैंने क्या किया हाजी साहब?
मसूद ने मुझे कल रात बताया तुम नशेई हो।
मैंने आपको कहा था वो मुझे आपकी नजरों में गिराना चाहता है ताकि मैं तन्हा हो जाऊं।
यानी वो झूठा है?
अगर मैं कहूं कि मसूद ने झूठ बोला है तो आप मेरी बात को मानेंगे या उसकी बात को? बेकार का सवाल है। मालूम है मेरी कहां सुनेंगे, वो आपका बेटा जो है।
इन दो सालों में मसूद ने हमसे बेपनाह झूठ बोला है, मुझसे, अपनी मां से, यहां तक कि मासूमा से। जो बंदा इतना झूठ बोलता हो उसका एतबार उठ जाता है, लेकिन मुझे यकीन है तुम मुझे सच बताओगी। तुम नशे हो?
अब नहीं करती, मैंने छोड़ दिया है।
मसूद ने कहा ये तुमने शादी की बात शुरू किया था। सही बात है। क्यों क्यों नशा करने लगी थी?
इसकी वजह भी आपका बेटा ही था हाजी साहब। मुझसे शादी तो की थी लेकिन बाद में बिल्कुल तन्हा छोड़ गया था। जैसे वो कहा क्या हो, उसने मेरे लिए घर लिया, फिर मैं वहां रह गई बिल्कुल तन्हा।
जहां तक मुझे याद है मसूद इन दो सालों में बहुत कम अपने घर आया करता था, और अगर वो अपने घर होता था तो उसका दिल कहीं और होता था। तुम कैसे कह रही हो कि तुम तन्हा थी? यकीनन तुम बहाना कर रही हो।
नहीं हाजी साहब, मैं बहाना क्यों करूंगी? अभी कुछ दिनों से तो मसूद मेरे पास आता ही नहीं था, बिल्कुल गायब रहता था। बहाना करता था कि आप उस पर शक करते हैं। पता नहीं, शायद काफी दिनों से वो अपने एक दोस्त हामिद के साथ बहुत ज्यादा रहता था। शायद मेरे और मासूमा के अलावा उसकी जिंदगी में कोई तीसरी औरत भी आ चुकी, और शायद यही वजह थी कि वो मुझसे और मासूमा से अपना मुंह छुपाता फिर रहा था। बहरहाल हाजी साहब, आप मुतमईन रहे, मैं झूठ नहीं बोल रही। मसूद अगर आपके पास नहीं होता था तो मेरे पास भी नहीं होता था वो।
नशा छोड़े कितना टाइम हुआ? क्या वाकई तुमने नशा छोड़ दिया है?
हाजी साहब, मैं नशा बिल्कुल छोड़ चुकी हूँ।
कब से?
थोड़े दिन हुए हैं, लेबोरेटरी टेस्ट के बाद छोड़ा है मैंने नशा।
इसी वजह से तुम्हारा रंग उड़ा हुआ है और तुम्हारे हाथ भी कपकपा रहे हैं। अभी तुम ये समझ रही हो कि तुमने उसे छोड़ दिया है?
नहीं हाजी साहब, मैंने किसी और के लिए नहीं, सिर्फ अपने बच्चे के लिए हीरोइन छोड़ी है। अब चाहे कुछ भी हो, मेरी कैसी भी हालत हो, मैं नशे को हाथ नहीं लगाऊंगी।
खुदा करे कि ऐसा ही हो जैसा तुम कह रही हो, लेकिन अगर खुदा ना खास्ता ऐसा हुआ, यानी तुमने जबरदस्ती इसको छोड़ तो दिया, मुमकिन है इसके बद असरात बच्चे पे पड़े और नाकस पैदा हो।
मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होगा।
तुम कैसे कह सकती हो ये?
इसलिए क्योंकि मैं उसकी माँ हूँ, अगर बीमार होगा या कुछ भी होगा उसे मुझे पता चल जाएगा।
शायद तुम ठीक कह रही हो, लेकिन तसल्ली के लिए तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो, मुआयना करके बताए।
नहीं भाई, ना मैं डॉक्टर के पास जाऊंगी, ना ही किसी और जगह। बच्चा मेरा बिल्कुल ठीक ठाक है।
मैंने कब कहा कि ठीक नहीं है? लेकिन डॉक्टर के पास जाने में तुम्हें क्या तकलीफ है? इस गुस्से की क्या वजह है?
मैं गुस्सा इसलिए कर रही हूँ कि मुझे मालूम है कि आपकी बातों का मतलब क्या है। मैं जानती हूँ आप क्या चाह रहे हैं। आप मेरे बच्चे को मरवा देना चाहते हैं ताकि आपका बेटा सुकून में आ जाए।
इस दुनिया में आना अगर उस बच्चे की जुबाई से तकलीफ है तो क्या ये अच्छा नहीं है कि उसको इस दुनिया में आने ही ढक दिया जाए?
नहीं नहीं, गलत कह रहे हैं आप। अगर ये बच्चा दुनिया में आया तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान आपको और मसूद को होगा, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी आप पर होगी। उसको बड़ा करने के लिए मेहनत करनी होगी, खर्चा करना होगा। मेरा नशा तो सिर्फ एक बहाना है जो आपकी मुश्किल को हल कर देगा। ये मसला आपका है।
बहाना कौन कर रहा है? एक नाकस बच्चे का इस दुनिया में आना किसी तरह सही नहीं है। अकल भी यही कहती है और शर्म भी यही कहती है।
बहुत अफसोस है, मैं इतनी बड़ी अहमक थी कि मैं आपके पास आई कि मेरे बच्चे को बचाने, लेकिन मुझे मालूम नहीं था कि आप मसूद से कुछ कम नहीं है। मैंने सोचा था कि इस बच्चे का दादा उसको बचा लेगा और उसकी बेगुनाह जिंदगी का दिफा करेगा वो। मैं नहीं समझती कि आप मेरे मसूद में कुछ फर्क है, हालांकि आप उसे भी बता दें। मसूद बेगैरती की बातें करता है लेकिन वो शराब को बीच में नहीं लाता। इतनी इज्जत तो है उसके दिल में, लेकिन आप तो अपने सारे गुनाहों पे शरीयत का पर्दा डाल देते हैं जनाबे अली, और ऊपर से ये कहते हैं कि इस तरह मेरे दिलो दिमाग को सुकून मिलेगा। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई झूठ बोले और उसको आदत करार दे। बिल्कुल ऐसे जैसे कोई शख्स गुनाह करे और उसको मसलहत का नाम दे और कहे मैंने तो कोई गुनाह ही नहीं किया।
खत्म करो ये बेकार की बकवास लड़की। मुझे नहीं लगता ये सारी बातें तुम बच्चे को बचाने के लिए कर रही हो, और अगर तुम सच्ची हो तो मेरे साथ डॉक्टर के पास चलो ताकि वो बताए कि ये बच्चा जिंदा रहेगा भी या नहीं, या अगर जिंदा रहेगा भी तो किस हाल में जिंदा रहेगा। क्या एक बीमार इंसान बन के मजबूरी की जिंदगी गुजारेगा? कितना अच्छा होता अगर तुम ये बातें सच्ची ममता के जज्बे से कर रही होती, ना कि सिर्फ मक्कारी के जज्बे से और हमें लूटने की खातिर।
अगर ऐसा होता, अदालत में मुझे तुम्हारा बेटा मेरे लिए 200 मिलियन का चेक बना के लाया था जो मेरा महर था, मैं वो ले सकती थी। तलाक के कागजात देती, चेक लेती और वहाँ से चली जाती, और बाद में आपके पास आती बकौल आपके बच्चे के नाम पे माल लूटने के लिए। मुझसे बड़ा अहमक कहाँ होगा कि चेक नहीं लिया और सीधी आपके पास आ गई, और आपने मुझ पर ये इल्जाम लगा दिया और ये सलूक किया मेरे साथ। दरअसल आप वो इंसान नहीं जिसके बारे में मैंने सोचा था। आप में और मसूद में कोई फर्क नहीं है। जनाब आका सरमद, मैं इस बच्चे को दुनिया में लाऊंगी। मैंने इस बच्चे की खातिर नशे को और अब उसके बाप दादा को भी छोड़ दिया है। मैं खुद इसको पाल पोस के बड़ा करके दिखाऊंगी, और जब वो बड़ा हो जाएगा तो मैं उसे आपके पास लेकर आऊंगी ताकि आप उसे देख के शर्मिंदा हो सके। मेरा मसूद और आपसे हिसाब किताब अब आखिरत में ही होगा।
روزها فکر من این است، همیشه سخنم که چرا غافل از احوال دل خویشتنم. از کجا آمدم آمدنم، بهر چه بود، به کجا میروم آخر، ننما وطنم. خنک آن روز که پرواز